1978 में रिलीज हुई फिल्म डॉन अमिताभ बच्चन की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जैनन जी। इस फिल्म में एक हादसा हुआ था, प्रोड्यूसर नरिमन ईरानी की सेट पर ही उस हादसे में मौत हो गई थी। इस फिल्म को देवानंद और जितेंद्र दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। इस फिल्म में एक और खास बात थी, वो ये कि इस फिल्म में प्राण साहब को अमिताभ बच्चन से बहुत ज्यादा पैसे मिले थे। हालांकि हीरो अमिताभ थे, मगर पैसे प्राण को ज्यादा मिले थे।
फिल्म की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। डॉन एक मुजरिम है जिसे सारी पुलिस फोर्स पकड़ने की कोशिश करती है। इंटरपोल के ऑफिसर मलिक इस केस की छानबीन के लिए इंडिया आते हैं। पुलिस का एक आदमी डॉन के गैंग में रहता है। डॉन को उसके बारे में जैसे ही पता लगता है वो उसे मार डालता है।
डॉन,
चीयर्स जेंटलमैन।
डॉन, तुमने इसे गोली को मार दी। क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा?
नारंग, मेरे ये बताने से क्या राजेश को दोबारा जिंदगी मिल जाएगी?
लेकिन कोई तो वजह होगी।
यस स्वीट हार्ट, वजह यह है कि पांव देखो इसके, मुझे इसके जूते अच्छे नहीं लगे। शूज,
जूते अच्छे नहीं लगे? राजेश इतने काम का आदमी था और तुमने?
रमेश, इसके दाएं पांव का जूता उतारो। उतारो। अब जरा इसके हील को टर्न करो, घुमाओ।
माय गॉड, इसमें तो कुछ पेपर्स हैं।
मैक, नारंग, तुम्हारे काम का आदमी दरअसल में पुलिस का आदमी था, पुलिस इन्फॉर्मर था। ये देखो, हमारे खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन और ये नंबर। मेक मी अनदर ड्रिंक प्लीज, विल यू लव।
ब्लडी बास्टर्ड।
मलिक साहब डीएसपी से कहते हैं कि उनको लगता है कि शायद उनकी ही डिपार्टमेंट में कोई डॉन से मिला हुआ है। डॉन की गैंग का एक आदमी रमेश काम छोड़ना चाहता है। उसे उसकी बहन रोमा और मंगेतर कामिनी दोनों मिलकर काफी समझाती हैं कि वो इस तरह का काम छोड़ दे और उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए।
रमेश रोमा की बात मानकर शहर से दूर जाने ही वाला था कि डॉन को इस बात का पता लग जाता है और वो रमेश को मार डालता है। रमेश की मौत से कामिनी को काफी दुख होता है और वो उसके खून का बदला लेने के लिए डॉन को पुलिस से पकड़वाने की ठान लेती है। डॉन के साथ एक होटल के कमरे में जाती है। डॉन को रोकने के लिए और उसका दिल बहलाने के लिए वो ये गाना गाती है।
गाना खत्म होता है और वहाँ पुलिस आ जाती है। कामिनी डॉन को बताती है कि वो उससे रमेश के खून का बदला लेने के लिए आई है और बाहर पुलिस फोर्स डॉन को पकड़ने के लिए आ जाती है। तभी डॉन कामिनी के मुंह पर पट्टी बांध देता है क्योंकि उसे पता है कि पिस्तौल में गोली नहीं है और पुलिस की आंखों के सामने से ही भाग जाता है।
दूसरे दिन खबर आती है कि कामिनी मर चुकी है। रोमा जूडो और कराटे सीखने जाती है। वो पूरी ट्रेनिंग लेकर एक दिन किसी होटल में जाती है जहां डॉन के दो लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। उनके सामने वो दो पुलिस वालों का खून कर देती है और जाकर डॉन के आदमियों की गाड़ी में छिप जाती है। वो दोनों रोमा को अपने साथ अपने अड्डे ले जाते हैं। वहाँ एक आदमी रोमा की काबिलियत पर शक करता है तो रोमा उसकी अच्छे से पिटाई करती है। डॉन को रोमा का काम काफी भाता है और वो उसे काम पे रख लेता है।
डॉन किसी स्मगलिंग डील के लिए लॉकर से पैसे निकाल रहा था कि उसकी नज़र लाल डायरी पर पड़ती है। उसका आदमी नारंग उसे बताता है कि उस डायरी में उन सभी का नाम और पता है जो ये काला धंधा करते हैं। पैसा लेकर डॉन हार्बर जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि पुलिस वहां उसका इंतजार कर रही है।
डॉन वहाँ से भाग निकलता है पर डीएसपी उस पे गोली चला देते हैं। गोली लगते ही वो पानी में कूद जाता है। पुलिस डॉन को पानी में तलाश करती है पर वो डीएसपी की कार में जा छिपता है। जैसे ही डीएसपी कार में बैठते हैं वो उन पर पिस्तौल तान देता है और कहता है,
तुम लोग ये भूल गए कि डॉन जख्मी है तो क्या, फिर भी डॉन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
डीएसपी के गाड़ी को रोकते ही वो देखते हैं कि डॉन मर चुका है। वो डॉन का अंतिम संस्कार करवाते हैं और उस बात को राज रखते हैं कि डॉन मर चुका है। डीएसपी को 6 महीने पहले की एक बात याद आती है कि एक आदमी जिसका नाम विजय था 2 बेसहारा बच्चों को लेकर कंप्लेंट लिखवाने आया था। ये गाना गाता है विजय,
ई है बम्बई नगरिया छुचेक बबुआ, है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया तू देख बबुआ, जादू टोने की बजरिया में, जादू टोने की बजरिया में, माया की नगरिया में, बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ।
ये आदमी डॉन का हमशक्ल है पर रोज इसी तरह अपना और उन 2 बच्चों का पेट पालता है। डीएसपी उससे मिलने जाते हैं और उसे डॉन की गैंग में शामिल होकर उसकी जगह लेने के लिए कहते हैं। विजय जब उनकी बात नहीं मानता तो अपनी बात मनवाने के लिए बच्चों की पढ़ाई का लालच देते हैं और कहते हैं वो बच्चों की देखभाल करेंगे। विजय मान जाता है। विजय जिन 2 बच्चों की देखभाल कर रहा है उसका बाप जसजीत जेल में है, वो अपने जुर्म की सजा काट रहा है। वो अपनी इस हाल की कहानी जेल में अपने एक साथी को बताता है कि उसकी बीवी बहुत बीमार थी और इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन उसे गलत काम करना पड़ा था, पर पुलिस उसे पकड़ कर ले आती है। वो अपने बीवी को बचा नहीं पाता और वो मर जाती है।
डीएसपी उन 2 बच्चों को अच्छे स्कूल और हॉस्टल में दाखिल कराते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं। वो विजय को डॉन बनाने की पूरी ट्रेनिंग देते हैं।
आपने जो कुछ भी इस डॉन के बारे में बताया बहुत खुलासे में बताया, कहने का मतलब यह है कि बहुत कम बताया। अब देखिए ना, आज तक मैं उसके साथियों का नाम तक नहीं जानता हूँ और ना ही ये जानो उसकी छोटी छोटी आदतें, उसका उठना बैठना, उसका रंग ढंग, उसके तौर तरीके, यानी कि समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ।
मैं जानता हूँ मैं तुम्हें डॉन के बारे में ज्यादा नहीं बता सका, लेकिन
हाँ
इसकी भी तरकीब है मेरे पास। जब डॉन अपने साथियों के पास पहुंचेगा तो वो जख्मी और बीमार होगा, अपनी याददाश्त खो चुका होगा, समझ गए?
समझ गए।
जैसे जैसे तुम्हें डॉन के पिछली जिंदगी के बारे में पता चलता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी याददाश्त वापस आती जाएगी, समझ गए?
डीएसपी साहब एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, आप जो हर बात पर मुझसे पूछ लेते हैं कि समझ गए, तो क्या आपने हमको बिल्कुल शिकारपुर का समझ रखा? अरे भाई समझेंगे कैसे नहीं।
डॉन पान नहीं खाता था?
पान नहीं खाते? ये बहुत बुरा करता था डीएसपी साहब। खैर अब ये आदत भी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि फिर वहां पहुंचकर। हाँ डीएसपी साहब, मैं वहां पहुंचूंगा कैसे?
इसकी भी तरकीब है मेरे पास।
तरकीब है ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं
हेलो कौन बोल रहे हैं आप? प्लीज जरा जोर से बोलिए।
मिस्टर वर्मा, मैं आपको बता सकता हूं कि डॉन कहां छुपा हुआ है।
डॉन?
ये बात छोड़िए कि मैं कौन हूं, आप ये सुनिए कि डॉन कहां छुपा हुआ है।
ये खबर फैल जाती है कि डॉन पकड़ा जा चुका है पर उसकी याददाश्त चली गई है। मौका पाते ही रोमा विजय को डॉन समझकर हॉस्पिटल से भगा ले जाती है।
विजय डॉन के अड्डे पर पहुंच जाता है और याददाश्त खोने की नाटक करता है। वो धीरे धीरे गैंग के बारे में सब कुछ जान जाता है और डॉन के गैंग में सब विजय को डॉन समझते हैं। वो डॉन की याददाश्त वापस लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। एक दिन विजय याददाश्त वापस आने का नाटक करता है। रोमा डॉन को मारने का मौका ढूंढती रहती है। एक पार्टी में रोमा ये गाना गाती है,
जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था।
किसी तरह से वो लाल डायरी एक नकली डायरी से बदल देता है। वो ये डायरी डीएसपी के हवाले करना चाहता है। डीएसपी विजय को तब तक गैंग में रहने की सलाह देते हैं जब तक वो उस गैंग के असली लीडर वरदान को नहीं पकड़ लेते। इसीलिए विजय रोमा के साथ डीएसपी के घर जाता है।
पर रोमा विजय को डॉन समझकर मारने की कोशिश करती है और ये बता देती है कि वो रमेश की बहन है। विजय बच निकलता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। इसी बीच डीएसपी आ जाते हैं और रोमा को पूरी सच्चाई बताते हैं कि वो डॉन नहीं विजय है।
रोमा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और विजय से माफी मांगती है। विजय रोमा से कहता है कि वो डॉन की एक्टिंग करने के दौरान रोमा के काफी करीब आ गया था। रोमा उसके जवाब में विजय के और करीब आ जाती है। रोमा विजय से उसके काम करने की वजह पूछती है तो वो रोमा को अपने उन दोनों बच्चों से मिलवाता है।
विजय डीएसपी को फोन पे रात को होने वाली पार्टी के बारे में बताता है। जसजीत जेल से छूट जाता है और सीधे डीएसपी के घर उनका खून करने के इरादे से पहुंच जाता है।
पहचाना आपने?
पहचाना।
और इसे भी पहचानते हैं आप? ये वही गोली है जो आपने मुझ पर चलाई थी।
क्या चाहते हो?
आपका खून करना चाहता हूं। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा।
देखो जसजीत, मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दो। इस वक्त मेरा एक जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर तुम मुझसे बदला ही लेना चाहते हो तो फिर किसी वक्त ले लेना, मगर मुझे जाने दो।
तुम्हें कैसे जाने दूं डीएसपी साहब? तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मर गई, तुम्हारी वजह से मैं अपाहिज हो गया, तुम्हारी वजह से मेरे मासूम बच्चे दीपू और मुन्नी ना जाने कौन से फुटपाथ पर भीख मांग रहे होंगे। तुम्हें
ठहरो। दीपू और मुन्नी, क्या वो तुम्हारे बच्चे हैं?
क्यों, तुम जानते हो वो कहां है?
हाँ, मैं जानता हूं वो कहां है, लेकिन पहले मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दो। वापस आने के बाद मैं तुम्हारे बच्चों को पता तुम्हें बता दूंगा।
वापस आकर क्यों, अभी क्यों नहीं?
पता जानने के बाद अगर तुमने मुझे यहां से ना जाने दिया तो?
और रिवॉल्वर लेने के बाद अगर तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो?
यह भी हो सकता है, लेकिन तुमको मुझ पर यकीन करना होगा। और अगर यकीन नहीं कर सकते तो बेशक मुझे गोली मार दो, लेकिन इतना याद रखो कि तुम्हारे बच्चों का पता मैं, सिर्फ मैं जानता हूं। सोच लो,
मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करता जितनी अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूं। जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा।
अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं कौन? डम 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 डम। मैं हूं डम,
खत्म होते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और डॉन समेत उसके सारे साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ कोई डीएसपी पर गोली चला देता है और उनकी हालत काफी नाजुक हो जाती है। विजय पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि वो बेगुनाह है, पर वो नहीं मानते।
विजय हर बार अपनी बेगुनाही का सबूत लाने की कोशिश करता है पर खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता। विजय की हालत इतनी खराब हो जाती है कि एक तरफ डॉन के आदमियों को पता चल जाता है कि वो विजय है डॉन नहीं, और दूसरी तरफ पुलिस को यकीन ही नहीं होता कि वो विजय है। पुलिस समझती है कि वो डॉन है।
पुलिस उन सारे मुजरिमों को किसी जेल में शिफ्ट करती है, पर विजय उनमें से एक के साथ भिड़ जाता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। उसे भागने का मौका मिल जाता है और वो भाग जाता है। विजय खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए रोमा को उस लाल डायरी का पता लगाने को कहता है।
पुलिस फिर विजय का पीछा करती है पर वो भाग निकलता है और सीधे जसजीत के घर में जा छिपता है। जसजीत उर्फ जेजे पुलिस को कुछ नहीं बताता और विजय वहां से भाग जाता है। विजय बाद में रोमा से मिलता है।
वो दोनों पुलिस की नजरों से बचते हुए कुछ लोगों के बीच जा पहुंचते हैं जो मस्ती में भांग पी रहे थे। वो उनसे उस रात सर छुपाने की जगह मांगते हैं।
कौन हो भाई? अरे कौन हो बाबू साहब, का चाहिए तुमका?
अरे भैया का बताए हमका का चाहिए, बस इतना समझ लिया कि हम तोरे मुलक के हैं।
ऐसा?
हाँ।
अच्छा,
हमका सर छुपाए की जगह चाहिए।
अरे बप्पा, अरे बप्पा, हम कहा बहुत अच्छे बाबू साहब, कपड़ा लत्ता तो अंग्रेजी बाय, भाषा वह गंगा किनारे वाली हो। अरे गोविंदा, तबीयत हरी हो गई रे। बैठा बाबू साहब, बैठा मेन साहब, बैठ जा, बैठ जा, बैठ।
ये लो साहब शिव जी का प्रसाद, पी लो पी लो।
पीले बाबू, बाबा भोला नाम का।
बस करो विजय, चलना नहीं है क्या?
अरे बैठा हो बैठा, हम चलाए तो कहाँ चलाए आए। अरे हमार हाल तो ऐसा हो गवा है भैया कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वाह डीएसपी साहेब वाह, अच्छा बंदोबस्त करके गए हो हमारा, बहुत अच्छे। अरे वो कहा कहा था?
कहा कहा था?
अरे अब कहा बताई कहा कहा था? बस भैया ये समझ गया कि बुढ़ाऊ मर गए औलाद छोड़ गए। हमार दिल तो हमसे कहत रहा, हमार दिल हमसे कहत रहा कि बचुआ अमा टंगड़ी मत अड़ा, ये काम बहुत झंझाल का है। तू बोले चढ़ जा बेटा सूली पे, तो हम चढ़ गए। तब ले भुगत तो का करी भैया, तो भुगतता है पड़ी, हमका तो भुगतता है।
ओ कम ऑन विजय प्लीज।
अरे इनकारी कारी नैनन से,
इनकारी कारी नैनन से,
तू घूर ना हमको ऐ गोरी। अरे मारी कटारी मर जाय हो, अरे अखिया हमसे मिला नाना, जाय थे भैया हमसे मिला नाना।
अरे एक तो भी आप पान तो खाते जाओ पान।
का कहा भैया?
पान
पान।
हाँ हाँ पान।
अरे पान लावा।
अरे गंगा कसम, अगर आपके झोला ना मस्त हो जाए तो हमारा नाम निकाल दियो, ये बनारसी पान है बनारसी।
अरे लावा लावा। ये हाय हाय जवाना हो गवा, पान खाए हमका।
चलो ना विजय।
अरे ठहरा हो, पहले पान फिर गान, का कहा तो भैया? हाँ,
अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबा। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जा। खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, बनाओ रसवाला, खुल जाए बंद अकल का ताला।
ओ मेम साहब हमरा संग नाचा हो नाचा।
विजय इंटरपोल के ऑफिसर मल्लिक को फोन करता है और उनसे मिलना चाहता है। मल्लिक विजय से मिलता है और ये कहता है कि वो जानता है कि विजय डॉन नहीं है, क्योंकि वो खुद मल्लिक नहीं है बल्कि वो वरदान है। वरदान के सभी गुंडे विजय का पीछा करते हैं, पर वो किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है।
विजय इंस्पेक्टर वर्मा के नाम एक चिट्ठी लिखता है कि मल्लिक ही असल में वरदान है। वर्मा जैसे ही ये बात वरदान को बताने जाता है तो वो उसे अप्रैल फूल का मजाक कहकर टाल देता है।
इंस्पेक्टर वर्मा आप कब आए?
बस अभी। मलिक साहब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे।
अच्छा, लेकिन मिस्टर वर्मा आपकी बात बाद में, पहले मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे।
कहिए।
कल मुझे एक गुमनाम खत आया है आपके बारे में। क्या मिस्टर वर्मा, इस खत में लिखा है कि आप उन तमाम लोगों से मिले हुए हैं जो डॉन के सिंडिकेट में काम करते हैं। दरअसल एक पुलिस ऑफिसर के भेष में आप उन मुजरिमों के एजेंट हैं जो यूरो वगैरह वगैरह। पता नहीं किसने ये मजाक किया होगा। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे ना?
मैं, अजीब बात है मिस्टर मलिक, मैं भी आपसे यही बात करने वाला था। मुझे भी एक इसी तरह का खत मिला है आपके बारे में।
दिखाइए। कमाल हो गया, आप अभी भी नहीं समझे मिस्टर वर्मा? हाँ
नहीं।
अच्छा बताइए, आज तारीख क्या है?
तारीख
1 अप्रैल। हमें किसी ने अप्रैल फूल बनाया है। अच्छा आप यहाँ बैठिए, मैं भी आता हूँ।
विजय एक गुंडे से ये सच उगलवाता है कि डीएसपी का खून वरदान नहीं किया था।
माफ करना भाई टकलू, मैं जानता हूँ कि शाम को तुम किसी से मिलना पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सिर्फ 10 मिनट लेने आया। पहले 5 मिनट तुम्हारी पिटाई करूंगा और दूसरे 5 मिनट में तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। शकल, वरदान के बारे में अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं जानता हूं जिस दिन रेड पड़ी उस दिन जिस कमरे में डीएसपी को गोली लगी उसमें सिर्फ तुम और तुम्हारे साथी थे। डीएसपी का खून तुमने किया शकल, इसलिए तुम्हारा खून करने में मुझे कोई कमी नहीं होगी।
बताता हूं, डीएसपी का खून मैंने नहीं किया था, वरदान साहब ने किया था।
वरदान?
कैसे? कैसे? जिस दिन पुलिस की रेडी हुई थी थोड़ी देर के लिए मेरे को पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं अंदर कमरे में बैठकर अपने 2-3 साथियों के साथ शराब पी रहा था और अचानक प्रधान साहब आ गए।
Shut up, you fools! ऊपर पुलिस ने रेड कर दिया और तुम लोग यहां मजे उड़ा रहे हो।
पुलिस?
हाँ पुलिस। सुनो, मैं पुलिस को वहां रोकता हूँ, तब तक तुम लोग इस दरवाजे से निकल जाओ।
बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं।
डीएसपी साहब आप?
मैंने सब सुन लिया है, तुम आज तक इंटरपोल ऑफिसर के भेष में पुलिस को धोखा देते रहे, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है मिस्टर वर्धान।
डीएसपी साहब, वर्धान का खेल खत्म होने वाला खेल नहीं है।
You rascals, don't move!
क्या हुआ साहब?
देखो, इन लोगों ने डीएसपी साहब को गोली मार दी है।
ऑफिसर्स, अरेस्ट देम ऑल।
शकल, ये सारी कहानी तुम्हें पुलिस के सामने दोहरानी पड़ेगी। मुझे वरदान के खिलाफ सारे सबूत चाहिए।
वरदान उन दोनों बच्चों को अगवा कर लेता है। जसजीत उस लाल डायरी का सौदा करने जाता है और बदले में 10 लाख रुपए देने को कहता है। तभी वर्मा वहां आ जाता है और वरदान सबको छुप जाने के लिए कहता है। जसजीत जिस कमरे में छुपता है वहां उसकी मुलाकात उसके बच्चों से होती है।
कुछ देर बाद जेजे अपने बच्चों को लेकर भाग जाता है। विजय जेजे को बच्चों को लेकर भागते देख लेता है और उसका पीछा करता है। जेजे और विजय का आमना सामना होता है और उन दोनों की खूब लड़ाई होती है।
तुम लोग वहाँ सीढ़ियों पर बैठ जाओ और देखो जब तक मैं वापस नहीं आऊँ यहाँ से जाना नहीं।
लेकिन डैडी आप?
तुम मेरी फिक्र न करो, वो आदमी जो हमारा पीछा कर रहा है ना, मैं उसको ठीक करके आता हूँ।
तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं शायद, लेकिन एक बार तुमने मुझे पुलिस से बचाया था, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, बच्चे मेरे हवाले कर दो।
मैंने तुम्हें पुलिस से जरूर बचाया था, लेकिन दोबारा बच्चों का नाम भी लिया तो शायद अपने आप से न बचा सकूं। चले जाओ यहां से।
बच्चे कहां हैं?
इस गली के उस तरफ, और मेरे होते तुम इस गली को पार नहीं कर सकते।
चले गए थे तो इन्होंने हमें अपने घर रखा था। ये बहुत अच्छे हैं। और विजय चाचा, ये डैडी है, हमारे डैडी।
डैडी, माफ करना विजय, मैं तुम्हें अपने बच्चों का दुश्मन समझा था।
कोई बात नहीं, हम दोनों ही गलत समझे थे।
तुमने मुसीबत में मेरे बच्चों को सहारा दिया। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ।
मैं तो ऐसी मुसीबत में हूँ कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता।
पूछ सकता हूँ उस दिन पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों थी?
क्या बताऊं, वो लोग समझते हैं कि मैं निकलता हूं।
अगले दिन वरदान रोमा को डायरी लेने के लिए भेजता है। रोमा जेजे को पैसा देकर डायरी लेती है, पर वरदान के आदमी उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। तभी ऐन मौके पर विजय वहां आ जाता है और ये तीनों मिलकर वरदान और उसके सभी आदमियों को अच्छी तरह से सबक सिखाते हैं।
भैया नारक, हमारी तरफ एक कहावत है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही उसमें गिर जाता है, समझ गए?
हाँ
हाँ, पकड़ लो पकड़ लो।
जे जे, तुम जहां भी हो वहां से देख सकते हो केस पर ट्रम्प कार्ड मेरे हाथ में है, इसलिए तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। टीपू वरदान,
मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं आ रहा हूं। मोहब्बत भी क्या चीज है, चाहे वो बच्चों की हो या
एनीवे, तुम तीनों मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश सुन लो, मुझे डायरी चाहिए। डायरी कहां है?
क्यों रोबा डार्लिंग, तुम बता सकती हो?
डायरी मेरे पास नहीं है।
ठीक है, लेकिन अगर डायरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी तलाशी अच्छी तरह लूंगा। देखो विजय, जिद नहीं करते, डायरी दे दो।
देखो भैया, मेरे पास कोई डायरी वाड़ी नहीं है।
तो फिर जेजे के पास होगी। क्यों जेजे?
डायरी मेरे पास भी नहीं है।
ओ आई सी, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। नारंग, एक काम करो, इन दोनों बच्चों को वहां सामने जिंदा दफन कर दो।
वरदान कमीने!
देखो जीजी, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई।
नारंग, गो अहेड।
ठहरिए ठहरिए, डायरी मेरे पास है।
गुड।
ये डीएसपी साहब का लेटर भी इसी में।
थैंक यू।
इन सभी की यहाँ लड़ाई होती है और इसी बीच वहाँ पुलिस आ जाती है और वो इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। विजय पुलिस को वो डायरी देकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे देता है और वरदान पकड़ा जाता है।
इंस्पेक्टर, ये आदमी मालिक नहीं है, ये मालिक नहीं है।
बहुत खूब, मैं मालिक नहीं हूँ, ये डॉन नहीं है। इंस्पेक्टर वर्मा, ये सारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। लेट्स अरेस्ट हिम।
लड़के, जो तुम कह रही हो उसका सबूत है तुम्हारे पास?
सबूत? सबूत तो था इंस्पेक्टर, मगर इस बदमाश ने उसे जला दिया।
यानी कोई सबूत नहीं? इंस्पेक्टर वर्मा, देखा आपने?
इंस्पेक्टर वर्मा ने तो देखा, लेकिन वरदान साहब, वरदान साहब, आपने नहीं देखा कि जो डायरी आप आग में फेंक रहे थे वो असली थी या नकली? ये असली डायरी, ये डीएसपी साहब का लेटर। आपके कहने पर मैंने आपको असली डायरी नहीं दी। थैंक यू जी, ये लीजिए। माफ कीजिएगा वरदान साहब, आज आप हार गए। अरे
चल बाहर निकल, मैं तुझे यहां जिंदा दफन करना नहीं चाहता। ये कब्रिस्तान इंसानों के लिए है, तेरे जैसे हैवानों के लिए नहीं। चल निकल। इंस्पेक्टर वर्मा, ये भैंसा सोटी से नहीं निकलेगा, खुद ही निकाल लो इसे।
और इसी तरह इस फिल्म की कहानी का भी अंत होता है।
भाई के